मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया, इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार और करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार संपन्न जांच समिति गठित की है। एक रिपोर्ट।
समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
केंद्र सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे।
लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है, तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट होंगे, फ्लैट होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है।
कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये योजना अधिक टिकाऊ, जीवंत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली का निर्माण करेगी। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अपनी कई सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्लान पूरे शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित इलाके सभी शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती परिवहन जरूरतों और प्रदूषण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना भी बनाई गई है।
पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, प्लान्ड एरिया, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़े।
विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी के लोगों के लिए विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। बढ़ती आबादी, परिवहन और प्रदूषण की चुनौतियों के बीच यह दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी को सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच केंद्र है जहां लोगों को अपने क्षेत्र में ही सुलभ और समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जांच के परिणाम डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।
आप सबको यहाँ ट्रेंड करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने लक्ष्य लिया था कि हम युवाओं को AI की शिक्षा देंगे, AI के कौशल से जोड़ेंगे, ताकि आज का युवा स्किल होल्डर बने जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अनुव्रत भवन में रेजिंग और एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत आयोजित मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में सहभागिता की। आयोजन में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4P रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ये जो ट्रेनिंग और होल्डिंग आप लोगों की है, ये भी सच में 4P रिफॉर्म की ओर हमें लेके जाएगी, जहां पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप हर चीज अपनी जगह काम करेगी और हम मिलकर के इस पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे।
दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
आपको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बहुत सारे आइडिया हमने आके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट किए। सोचिए, दिल्ली का पिछले हमारी सरकार आने से पहले कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000 करोड़ रुपया लगा था और हमने 4,806 करोड़ रुपया अपनी गारंटी दिल्ली सरकार ने देकर 4,806 करोड़ रुपया लगभग 10,500 लोगों को लोन देकर काम कराने का काम किया। ये काम करने की सोच है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम क्षेत्र के पास अरावली के संरक्षण और विकास पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दे रही है। इस साल के वन महोत्सव के दौरान मानेसर के पास 2,00,000 पेड़ लगाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहाँ पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3,50,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नरेला, बवाना, सिंघोला और भलसवा में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्रों का निरीक्षण किया तथा उनके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इनमें नरेला बवाना क्षेत्र में बन रहे 1200 टन और बवाना में ही स्थित निर्माणाधीन 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शामिल है। साथ ही निगम आयुक्त ने सिंघोला में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्री खिरवार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। नगर निगम ने लाल किला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के उपरांत लाल किला और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा विशेष रूप से सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के आगामी पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अंतर्राज्यीय अपराध शाखा ने नकली और गैर कानूनी तरीके से डायवर्ट की गई एंटी कैंसर दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल एक अंतर्राज्यीय समूह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कई दवाइयों की हेराफेरी करते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोप के पास से एंटी कैंसर इंजेक्शन की 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डब्बे और अन्य दवाओं की लगभग 3000 इकाइयां बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख नकद बरामद भी किया है। मामले की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिस पहल, जन कल्याण प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के विशेष उपायों का विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और महिला यात्रियों के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन के कामकाज, उसके इस्तेमाल और असर की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। वहीं पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने 19-21, 11-21 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्य समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।